समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है।
ये बताइए, रात 2 बजे से सुबह 7 बजे के बीच किस किसने ट्रैवल की और सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों पर घने कोहरे का लुत्फ लिया या कहर झेला? सच ही अरेनो में सुबह सड़कों पर घने कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि क्या आज आकाशवाणी भवन पहुंच भी पाऊंगी या नहीं
जी।
लेकिन हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर जिसने बेहद सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए सही सलामत और समय पर आकाशवाणी भवन पहुंचा दिया।
एब्सोल्युटली,
कोहरा तो अभी इस वक्त भी है सरबजीत, लेकिन बल्कि समूचे उत्तर भारत को ही इसने अपनी चपेट में ले रखा है और इसीलिए ट्रेन हो या फ्लाइट कई कई घंटे की देरी से चल रही है। लेकिन अपने श्रोताओं से अगर हम ये पूछें कि ये जो कोहरा होता है, क्या आप जानते हैं कि इस कोहरे को अनजाने में कुछ लोग धुंध का नाम देते हैं, जबकि दोनों में काफी फर्क है। जैसे कोहरा जो है वो धुंध से ज्यादा घना होता है और ज्यादा तेजी से छंटता है। कोहरा जब बनता है तो दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है, जबकि धुंध में दृश्यता 1 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। कोहरा कई घंटों जबकि धुंध कुछ मिनटों तक ही बनी रहती है। कोहरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, वहीं धुंध सेहत पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाल सकती है और कोहरा जमीन के पास तक होता है जबकि धुंध हवा में तैरती है। तो अगली बार अपने श्रोताओं से हम तो यही कहेंगे कि जब कभी आपका सामना धुंध से या कोहरे से हो तो आप आसानी से दोनों का अंतर पहचान पाएंगे। आपको पता है कि कोहरा क्या होता है और धुंध क्या होता है। कोहरे और धुंध पर इतनी अहम बातचीत के साथ आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। आज आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर और बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ कि मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। कैसी है सरबजीत?
ऑसम नईम, एंड मुझे लग रहा नईम आज आप खूब पढ़ाई करके आई है कोहरे और धुंध पे।
अरे भाई, और सुबह सुबह इतना पका दिया कोहरे ने कि मुझे लग नहीं रहा था मैं पहुंच पाऊंगी।
एंड नईम, इफ आई मे ऐड हियर दैट धुंध हो, कोहरा हो, बारिश हो या मौसम कैसा भी हो, दिस ऑपर्चुनिटी टू कनेक्ट विद आवर ऑसम लिसनर्स कांट बी सर्टेनली मिस्ड आउट।
और ये भी आपने सही कहा, और साथ में ये भी एक बात है कि ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी होती है।
बिल्कुल, एंड सो मच सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, यस लिसनर्स, यू आर कनेक्टेड विद अस फॉर आवर डेली न्यूज मैगजीन आज सवेरे, वेयर इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स we are absolutely packed with national and international news, metro city updates, and of course some historical information, some music to let you know what makes this awesome 4th January so memorable. So Naeem, without much ado, let's begin the program and let's begin with the news headlines with you.
Ji, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है।
The center has released the draft of Digital Personal Data Protection Rules 2025. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw shared that the draft rules are open for consultation and sought people's views. The Digital Personal Data Protection Act 2023 received the assent of President Draupadi Murmu in August 2023. The draft rules have laid out provisions related to consent processing of individuals, data processing bodies and the functioning of authorities under the Digital Data Protection Act 2023. According to the draft rules, a data fiduciary shall adopt appropriate technical and organizational measures to ensure that verifiable consent of the parent is obtained before the processing of any personal data of a child. In fact, Naeem, these measures are so important, you know, to protect the sanctity and innocence of children.
बिल्कुल सही बात है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा मालदीव के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व देता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के अंतर्गत मालदीव को सहयोग देना जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते की प्रगति की समीक्षा की। डॉ अब्दुल्ला ने भारत द्वारा मालदीव को समय पर दी गई आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया। दोनों देशों ने भारत के अनुदान सहायता के लिए मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तीसरे चरण को लागू करने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर भी किए।
Well, still on some more international news, India and Iran reviewed the entire spectrum of bilateral relationship, including Chabahar port, agricultural cooperation, trade and economic issues, as well as cultural and people-to-people ties. The 19th India-Iran Foreign Office consultations were held in New Delhi yesterday. Foreign Secretary Vikram Misri and Deputy Foreign Minister of Iran Majid Takht Ravanchi co-chaired the meeting. The External Affairs Ministry said in a statement that the discussions also covered current regional and global developments, including situation in Afghanistan, West Asia and the South Caucasus. The Foreign Secretary highlighted the significance of Chabahar port in supporting Afghanistan's reconstruction and economic development. Both sides reiterated their commitment to deepen cooperation in multilateral fora, including the UN, BRICS and SCO.
उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोहरे से वाहनों की आवाजाही बाधित रही और दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुईं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से उड़ान की ताजा जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले दो दिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है।
एंड सो लिसनर्स, इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, यू बेटर चेक द वेदर कंडीशंस एंड यू नो प्लान अकॉर्डिंगली। The Commission for Air Quality Management has invoked the Stage 3 of Graded Response Action Plan, GRAP, across the National Capital Region with immediate effect to prevent further deterioration of air quality. The move comes after air quality in the region deteriorated to very poor category. The GRAP 3 entails a ban on non-essential construction work and road construction activities. There will also be restrictions on plying of BS3 petrol and BS4 wheeler diesel vehicles in Delhi and in the districts of Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar.
बिहार में गुरु गोबिंद सिंह की 358वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव कल से पटना सिटी के तख्त श्री हरमिंदर साहिब में आरंभ होगा। तख्त श्री हरमिंदर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीडिया प्रभारी गुरविंदर सिंह ने कहा कि तख्त श्री हरमिंदर साहिब से विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य प्रकाश पर्व समारोह 6 जनवरी की मध्य रात्रि में आयोजित होगा। प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगत पटना साहिब पहुँच रहे हैं।
Listeners, moving to the field of sports now, in Hockey India League, the Tamil Nadu Dragons defeated Vedanta Kalinga Lancers in a tense shootout in Rourkela last night. We have a report on this.
Tamil Nadu Dragons held Vedanta Kalinga Lancers to 2-2 stalemate in regulation time and prevailed 6-5 shootout in Hockey India League on Friday.
Tamil Nadu Dragons regulation time mein pichadne ke baad vaapsi ki aur uske baad shootout ke sudden death mein aapko jeet mili hai.
Alexander Hendrick scored goal at 24th and 43rd minute for Kalinga Lancers, while Tom Craig at 31st and Jib Jansen at 51st found the target for Tamil Nadu Dragons at Birsa Munda Stadium, Rourkela. Goalkeeper David Hart was instrumental in the shootout, denying Dilpreet Singh and securing an extra point for the Dragons. Player of the match, David Hart, expressed,
"Certainly wasn't our best first half display, but in the second half we really started to get going and the end got the draw that we deserved."
Today match between Delhi SG Pipers versus Karachi Gar Bengal Tigers will be played at 6 p.m. and Hyderabad Tufans versus Team Gonasika at 8:15 p.m. You can listen to daily report on Hockey India League on Akashvani. This is Pratishtha Jain for Akashvani News.
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में आपके लिए वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर नजर डालेंगे।
मंत्रालय ने नीति सुधारों, प्रभाव संचालित पहलों और नवीन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 1,970 करोड़ रुपए की कुल 86 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पिछले साल की शुरुआत में मंत्रालय ने पारंपरिक कलाओं, शिल्पों और संस्कृतियों को एक जीवंत छत्र के नीचे मिश्रित करते हुए पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के लिए अमृत महोत्सव का आयोजन किया था। 2024 का मुख्य आकर्षण पहला अष्टलक्ष्मी उत्सव था, जो पूर्वोत्तर भारत के जीवंत कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और विशिष्ट भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कृषि वस्तु ई कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया गया। सुमित साह के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। चेन्नई से आपके पास क्या खबर है सरबजीत?
यस नईम, द मलयाली मरगाजी महोत्सव बिगैन एट चेन्नई। मलयालम नॉवलिस्ट एम मुकुदन इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ द फेस्टिवल। द 3-day फेस्टिवल सेलिब्रेट्स केरलाज रिच कल्चरल हेरिटेज थ्रू म्यूजिक, ड्रामा, डांस, एग्जिबिशंस, बुक रिलीज एंड मेनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स। Samavayam was the highlight, which brought out traditional art forms and a soulful musical performance by Navneet Unnikrishnan. And the city's Methamvittian Seraphirio became doubly dangerous as police teams trailing the mirth cartels recovered 5 guns and 79 bullets besides 4 kilograms of synthetic drug at Chennai. Weapons were recovered from 2 dealers who were arrested. The police said that special teams have been deputed to ascertain about the purchase of the guns. And Naeem, what's the buzz from Delhi today?
जी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बताया कि 7वीं विधानसभा में 1000 से ज्यादा प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री गोयल ने कहा कि 7वीं विधानसभा की पहली बैठक 24 फरवरी 2020 को और 74वीं बैठक पिछले साल 4 दिसंबर को आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि इसमें कुल 28 विधेयक पारित किए गए। श्री गोयल ने बताया कि 7वीं विधानसभा में 39 अल्पकालिक चर्चाएं और 13 ध्यानाकर्षण के विषय उठाए गए। एक और खबर दिल्ली से है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार आरोपी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लाइसेंस धारक से हिमाचल प्रदेश में केबल सेवाओं के संचालन के लिए रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई ने बताया कि बीती 1 जनवरी को यह मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने आरोपी के आवासीय और कार्यालय परिसर की तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। और बेंगलुरु की कोई खबर आपके पास?
जी नेम, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील HD कुमारस्वामी हेल्ड डिटेल्ड कंसल्टेशंस विद सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन बेंगलुरु टू एक्सप्लोर स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ मांड्या लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। The minister noted that 80% of the population in his constituency, Mandya, were dependent on agriculture, and hence the youth need to learn skills to gain employment in industries. He suggested that PSUs must come together to organize apprenticeship fairs in Mandya. He also proposed to extend training to the eligible youth in industry-ready skills. The union minister asked HMT Skill Training Center to train ITI, diploma and engineering graduates in skills that will ensure employment. In fact, Naeem, you know, this kind of initiative in the country ensures that when there is a lean period in the agricultural sector, the youth are not left unemployed or underemployed. And they have alternative engagements where they can, you know, engage themselves professionally, financially and productively. So it's a great initiative. Naeem, moving on to news from Mumbai, am I right?
Yeah. राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ड्यूटी फ्री शॉप के 2 कर्मचारियों सहित 4 व्यक्तियों को 6 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए DRI ने संदिग्धों पर निगरानी रखी। आखिरकार हवाई अड्डे के कर्मचारियों को पकड़ लिया गया क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल से सोना ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तस्करी में शामिल दो अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया। कुल 6.5 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4.84 करोड़ रुपए है। और हैदराबाद से आपके पास क्या खबर है?
जी नहीं, तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा इन द प्रेजेंस ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा सब एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय मिश्रा एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स हैज इनॉग्रेटेड द नो योर आर्मी मेला एट द हिस्टोरिक गलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद। द 3-day मेला इज ओपन टू द पब्लिक टिल टुमारो फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। Designed to inspire and motivate citizens, especially the youth, the event showcases cutting-edge military equipment, operational capabilities and indigenous innovations. The mela features an extensive display of artillery guns, communication systems, warfare suits and indigenous military innovations. The live demonstrations include a breathtaking Gatka performance by soldiers of the Punjab Regiment, showcasing the traditional Sikh martial art and among other highlights. In fact, the traditional Sikh martial arts are among other highlights. So indeed, Naeem, when I'm reading this story, I'm feeling absolutely inspired and motivated to attend these kind of events.
दिख रहा है आपके चेहरे पर, आपके आवाज में तो है ही। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान IIHT के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। IIHT हथकरघा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान है। और चलिए अब मौसम का भी जिक्र कर लेते हैं। देश के महानगरों का, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा है। आज कोहरे की ही सारी बात हम कर रहे हैं शुरू से, है ना?
एब्सोल्युटली।
न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान दिल्ली में 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में भी आमतौर पर आसमान साफ रहने का अनुमान है, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And Chennai is expected to have mist. The minimum temperatures were around 21 degrees Celsius. Maximum may go up to 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist too. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and the maximum will be around 27 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 14 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius।
और वक्त आ गया है कि 4 जनवरी मतलब आज ही के दिन, आज ही की तारीख में सारी दुनिया में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनमें से चंद का जिक्र कर लिया जाए।
जी, सो 1906 4th January, Prince of Wales laid the foundation stone of Victoria Memorial Hall at Calcutta.
1972 में नई दिल्ली के में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन हुआ।
4 January 1948, Burma achieved its independence from Great Britain. In 1959, again on this day, that is 4 January, Luna 1 became the first spacecraft to reach the vicinity of the moon. 1964, 4th January, the first diesel engine came out of the Varanasi diesel engine. 1967, Hindustan Aeronautics Limited began delivery of the MiG aircraft.
4 जनवरी 1999 को मंगल ग्रह पर भारत भाप का विश्लेषण करने हेतु अमरीकी यान मार्स पोसर लैंडर प्रोब का प्रस्थान हुआ।
एंड 2010, द बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, वाज ऑफिशियली ओपन्ड इन दुबई ऑन 4 जनवरी 2010।
हाँ, और 2010 की ही एक और महत्वपूर्ण घटना यह है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया।
दैट्स इंडीड अ वेरी यू नो सिग्निफिकेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नेम। एंड 2019 4 जनवरी, ऋषभ पंत बिकेम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू हिट अ टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया।
और 2020 को, क्योंकि आपने बात करी है अगर खेलों की तो हम भी खेलों पर ही आते हैं, 2020 को आज ही के दिन भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी।
बिल्कुल। And any more information in this front name, or should we move to the last and the most beautiful segment of this program?
जी, हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं अपने। आज हमारे पास जिन जिन हस्तियों की पुण्यतिथि और जयंती की बारे में जानकारी है जिन्हें हम याद करने वाले हैं, उनमें मेरे पास सबसे पहला नाम है मोहम्मद अली जौहर का। मोहम्मद अली जौहर जिनकी आज पुण्यतिथि है, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद थे। इन्होंने 1911 में कॉमरेड नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा 1914 में इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और मोहम्मद अली को 4 साल की सजा दी गई थी। मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत आंदोलन में भी हिस्सा लिया और अलीगढ़ में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली लाया गया। ये रायपुर रियासत के शिक्षा अधिकारी भी बनाए गए। 1930 में मोहम्मद अली लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए, जहां आज के दिन यानी 4 जनवरी 1931 में उनका देहांत हो गया।
लिसनर्स, वी आर आल्सो पेइंग ट्रिब्यूट टुडे द ग्रेट पोएट टी एस इलियट। टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। अ पोएट, essayist and playwright. In fact, Eliot was a leading figure in English language modernist poetry, where he reinvigorated the art through the use of language, writing style and verse structure. T.S. Eliot was noted for his critical essays, which often re-evaluated long-held cultural beliefs. And in fact, Eliot first attracted widespread attention for his poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, from 1914 to 1915, which at the time of his publication was considered outlandish. But Naeem, I have a verse from his poem, The Wasteland.
मैं भी यही कहने वाली थी कि अधूरी रह जाएगी बात, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे, तो उनकी राइटिंग का कोई एक पीस जरूर मिलना चाहिए सुनने को।
So I love to share this verse from the poem called The Wasteland, written by the great T.S. Eliot. Under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge, so many. I had not thought death had undone so many. Sighs, shots and infrequent were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet, flowed up the hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9.
Mesmerizing. Maza aa gaya sun karke. Aaj hi punyatithi hai आर डी बर्मन की, महान संगीतकार जिनका पूरा नाम राहुल देव बर्मन था और जिन्हें फिल्मी दुनिया में पंचम दा के नाम से पुकारा जाता था।
बिल्कुल
जी। अपने करियर के दौरान उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया। महमूद की फिल्म छोटे नवाब बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन उनकी असली पहचान फिल्म तीसरी मंजिल और फिल्म पड़ोसन से है। उन्होंने नासिर हुसैन, रमेश सिप्पी जैसे फिल्मकारों के साथ लंबे समय तक काम किया। 4 जनवरी 1994 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन दुनिया को गुनगुनाने लायक बहुत सारे गीत दे गए। उनकी आखिरी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी थी, जिसके गीतों की मधुरता आज भी कानों में रस घोलती है। और अगर उनकी उस दौर की तरफ बढ़ा जाए, जिस दौर में उन्होंने एक ऐसा तहलका मचा दिया था कि बस चारों तरफ आर डी बर्मन और आर डी बर्मन का ही संगीत सुनाई दिया करता था, तो उस दौर के गीतों की तो बात ही क्या थी। उस दौर के कुछ गीत सुन लेते हैं।
कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालू हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया,
कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालू हाल मोहे संभाल। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी।
में बुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू।
जी हाँ दोस्तों, हमारे गुलशन में तो तब गुल खिलते हैं जब हम और आप कनेक्ट करते हैं थ्रू आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
जी, एक और बहुत महान हस्ती की आज पुण्यतिथि है, अब्दुल हलीम जाफर खान, जिन्हें संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से पुकारा जाता है। इनका चमत्कारिक सितार वादन संगीत से अनभिज्ञ श्रोताओं को भी रसमग्न कर देता है। इनके वादन की अपनी अलग शैली है जिससे लोग जाफर खानी बाज कहने लगे हैं, जिसमें मिजराव का काम कम और बाएं हाथ का काम ज्यादा होता है। कर्ण, मुरकी, खटका सभी का काम अधिक होता है। इनकी प्रस्तुतिकरण में बीन और सरोद अंग का आभास होता है। इनके बारे में कहने को हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो चंद बातें, जो चंद पुरस्कार इनको मिले हैं उनके बारे में अगर कहें तो 1970 में उनको पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण, मध्य प्रदेश सरकार ने 1991 में शिखर सम्मान, 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने गौरव पुरस्कार और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको देकर नवाजा गया।
Yes, listeners, the words tolerance, inclusive society, these words are rather very, very close to my heart. And so I cannot miss this opportunity to but remember the great Louis Braille. Today is his birth anniversary, of French educator and the inventor of a reading and writing system named exactly after his own name, the Braille, intended for use by visually differently abled people. The system is used worldwide and remains virtually unchanged to this day. Braille in his adulthood served as a professor at the institute and had an avocation as a musician, but he largely spent the remainder of his life refining and extended the Braille system.
Aur aaj jayanti hai Nirupa Roy ki, Hindi cinema ki एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम माँ का पर्यायवाची बनकर रह गया। उनका असली नाम कोकिला बेन था। उन्होंने माँ के किरदार को इतने सशक्त तरीके से निभाया कि जब भी माँ के किरदार की बात आती है तो निरुपा रॉय का नाम आता है। निरुपा रॉय ने अपने 5 दशक के लंबे सिने करियर में लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया।
लेकिन माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
और आज ही जयंती है प्रदीप कुमार की, हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।
निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
And listeners, so much on the tribute fronts, but yes, today is the birthday of Gurdas Mann, singer, songwriter and actor mainly associated with Punjabi language music and films. And though his most famous song is Dil Da Mamla Hai, but I have a somber number for my dear listeners. जी हाँ दोस्तों, मामा ठंडियां छावा विद दिस ब्यूटिफुल ऑसम ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स एंड द लेडीज अराउंड। नईम, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो।
बिल्कुल, अपने श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नईम अख्तर और सरबजीत कौर को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 MHz पर।
Yes, listeners, stay tuned for Hindi समाचार प्रभात and morning news in English, and thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.